एक दूसरे के सामने। मामले की गंभीरता को समझते हुए आस्था ने खुद के इमोशंस को संभाला और वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप फिक्र मत करिए, बस ये पता लगाइए कि राजवीर जिंदल इस वक्त कहाँ रह रहा है। फिर मुझे चाहे अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालनी पड़े, मैं अपनी जान खतरे में डालूंगी, लेकिन अपने पति के लिए मैं वो एंटीडोट जरूर लेकर आऊंगी। अब आगे। आस्था अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आत्मविश्वास से बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। और वैसे भी प्रोफेसर प्रशांत ने मुझे बताया था कि राजवीर जिंदल जब भी किसी वायरस को बनाता है तो उसके साथ ही उसका एंटीडोट भी बना लेता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एंटीडोट भी मुझे उसके पास जरूर मिलेगा, जिससे मिस्टर सिंघानिया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस आप लोग मुझे ये पता करके बताइए कि राजवीर जिंदल इस वक्त कहाँ रह रहा है और उसका नया ठिकाना कहाँ है। कहीं ना कहीं आस्था ने अपने आप को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त वो अंदर से कितनी ज्यादा डरी हुई थी इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन आकाश को फोन पर बता दी थी और आकाश ने उसे सीधा सिंघानिया मेंशन पहुंचने के लिए कहा था। लेकिन फिलहाल वो ये सारी बातें किसी और को शेयर नहीं करना चाहते थे। घर में हंसी खुशी का माहौल था, बच्चों का जन्म हुआ था, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो ये सारी बातें घर में किसी को नहीं बताएंगे और सबसे पहले अच्छे से बच्चों का वेलकम करेंगे, क्योंकि वंशिका का मैसेज आ चुका था कि वो घर में सारी तैयारी कर चुकी है। इस सोच के साथ अब सब लोग बच्चों को लेकर घर की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अरमान इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि अपने ही ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद था और उसकी मीटिंग इस वक्त ठाकुर एम्पायर के साथ होने वाली थी। फिलहाल उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा बैठा हुआ था। अरमान जैसे ही उस चेहरे को देखता है तो वैसे ही उसका दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका गुरु राजवीर जिंदल बैठा हुआ था। ये मीटिंग संजना ने ही राजवीर जिंदल के साथ फिक्स की थी। राजवीर को अपने सामने देखकर अरमान की हालत काफी अजीब हो गई थी। वो लगातार बस राजवीर जिंदल को एकटक देखे जा रहा था, ना उसने कुछ कहा ना राजवीर ने। अरमान को राजवीर जिंदल से मिलना काफी अच्छा लग रहा था। अरमान देखते ही राजवीर ने उसके सर पर हाथ फेरा और उससे बोला, मैं जानता हूं अरमान कि तुम मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश हो। फिलहाल मुझे तुमसे यहां एक जरूरी मामले में डिस्कशन करना था, इसीलिए मुझे तुमसे मिलने यहां अचानक आना पड़ा। अरमान ने अपने तेज धड़कते दिल को संभालते हुए पूछा, ऑर्डर कीजिए सर, आपके लिए जो करना पड़े मैं वो जरूर करूंगा, बस हुक्म कीजिए। उसने ये बात बिल्कुल आसान तरीके से कहा था, लेकिन संजना जो पास ही खड़ी थी उसके हाथों का पसीना बढ़ गया था, क्योंकि दुनिया के दो सबसे खतरनाक लोग एक दूसरे के सामने बैठे थे। उसे वहां बहुत अजीब सी दहशत महसूस हो रही थी। ज्यादा देर तक वो दोनों की आरोगेंट एनर्जी झेल नहीं पाई और बहाना करके वहां से बाहर निकल आई, क्योंकि वहां उसका दम घुटने लगा था। वहीं अरमान बिना पलक झपकाए राजवीर जिंदल की ओर टकटकी लगाए देखे जा रहा था और राजवीर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। हालांकि मन ही मन राजवीर कुढ़ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी और इसी वक्त उठकर अरमान का गला दबा दे, क्योंकि जितनी बेरहमी और बुरी तरह से अरमान ने उसे भरी महफिल में मारा था और सबसे बड़ी बात, उसने उसकी मरी हुई बीवी का अंतिम संस्कार तक करवा दिया। ये बात राजवीर जिंदल के खून में आग लगाने के लिए काफी थी। उसे अरमान से इतनी नफरत थी जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था, लेकिन उसने अपनी नफरत को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। अरमान काफी देर तक राजवीर को घूरता रहा और अंत में उठकर उसके गले से लग गया। अरमान आज बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रहा था जैसा वो बचपन में करता था। जब वो छोटा मासूम बच्चा था तब वो ऐसे ही राजवीर के गले लग जाता था। आज भी वो उसी तरह राजवीर के गले से लगा हुआ था। राजवीर भी बड़े प्यार से उसे सहला रहा था। काफी देर तक उन दोनों ने ऐसे ही मोमेंट शेयर किए। इसी बीच काफी रात हो चुकी थी, लेकिन अरमान ने अब तक वहां से जाने का नाम नहीं लिया था। वहीं संजना जो बाहर खड़े खड़े काफी थक चुकी थी, सोच रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं इन दोनों के बीच जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं आज का असली काम कब शुरू होगा। अगर यही सब चलता रहा तो पूरी रात ये लोग ऐसे ही गुजार देंगे। फिलहाल कुछ सोचकर संजना मुस्कुराते हुए तुरंत केबिन के अंदर दाखिल हुई और जैसे ही वो अंदर आई वैसे ही उसने देखा कि उस वक्त राजवीर कुछ डॉक्यूमेंट पर अरमान के साइन ले रहा था और अरमान भी उस डॉक्यूमेंट पर खुशी खुशी साइन कर रहा था। फिलहाल संजना खुद के एक्सप्रेशन संभालते हुए सॉफ्टली बोली, सर काफी देर हो चुकी है। संजना की आवाज सुनकर अरमान ने तिरछी नजरों से उसकी ओर देखा और बिना किसी हाव भाव के उठ खड़ा हुआ। अरमान राजवीर को एक बार फिर गले से लगाने के बाद वहां से उठकर बाहर चला गया। वहीं अरमान का चेहरा, जो राजवीर के आने पर एकदम मासूम बच्चे की तरह हो गया था, एक पल में फिर से कठोर हो गया। तभी संजना ने जल्दी से सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अरमान से कहा, सर अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या प्लीज आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? काफी रात हो चुकी है, ऑफिस का सारा स्टाफ भी चला गया है। मैं इसीलिए रुकी थी कि कहीं आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। सच तो ये है कि संजना अरमान के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी, जिसका पूरा इंतजाम राजवीर ने पहले ही कर दिया था। इसीलिए उसे बस अरमान को अपने साथ बहाने से ले जाना था। फिलहाल अरमान ने उसे मना नहीं किया और अब देर ना करते हुए उसे अपने साथ में लेकर अनजानी राह पर निकल पड़ा। दूसरी ओर आस्था को जब से ये पता चला था कि एंटीडोट चोरी हो गया है, ऊपर से अबीर सिंह राठौर को किसी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तब से उसका शक कहीं ना कहीं राजवीर जिंदल पर जाकर अटक गया था। फिलहाल अब सभी लोग सिंघानिया मेंशन पहुंच चुके थे। आस्था ने अरमान को कॉल करने की कितनी ही कोशिश की, लेकिन अरमान राजवीर जिंदल के साथ मीटिंग में होने की वजह से एक भी कॉल अटेंड नहीं कर पाया। अब आस्था पूरी तरह बेचैन थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका पति अभी तक घर क्यों नहीं आया। सब चाहते थे कि आहान की प्रिंसेस का वेलकम अरमान अपनी आंखों से देखे। शायद परिवार में एक साथ रहने से धीरे धीरे अरमान के दिल की कड़वाहट कुछ कम हो जाए। सब लोग जानते थे कि अरमान को सिर्फ आस्था की मोहब्बत ही बदल सकती है, जिस तरह से वो पहले भी बदला था। उधर आहान को जब से एंटीडोट गायब होने की और अबीर सिंह राठौर के बर्बाद होने की खबर मिली थी, तब से वो पूरी तरह परेशान हो उठा था। लेकिन उसने अपने दिल की बात को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। फिलहाल बहुत ही अच्छे और खुशनुमा माहौल में बच्चों का वेलकम हुआ, लेकिन आहान ने अभी तक कोई रिएक्शन या एक्साइटमेंट जाहिर नहीं किया था, जो वो हर हंसी खुशी के माहौल में जाहिर करता था, और यही बात सीधे रौनक के दिल में जा चुकी थी। वहीं नानी, अभिमान जी, दादाजी सभी पूरी तरह बच्चों में गुम हो चुके थे, लेकिन आस्था के दिल में कहीं सुकून नहीं था। उसका दिल अनजाने डर से घबरा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। आस्था जल्द से जल्द अरमान को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी। वो लगातार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन अरमान ने उसका कोई भी कॉल नहीं उठाया। आस्था समझ गई कि उसे अब ऑफिस जाकर ही अरमान से मिलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को वेलकम करने का और पार्टी का टाइम निकल चुका था। इसीलिए उसने सोचा कि वो सीधे सीधे ऑफिस जाकर पता लगाएगी कि अरमान आखिरकार कहाँ गायब है। फिलहाल जैसे तैसे वो किसी की नजरों में आए बिना जल्दी से बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि अबीर सिंह राठौर खड़ा था। अबीर को अचानक सामने देखकर आस्था थोड़ी हैरान रह गई।
तब तक आकाश, सुमित और ध्रुव, आहन भी आकर आस्था के पास खड़े हो गए थे। अबीर के चेहरे पर निराशा की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आकाश ने तुरंत आगे बढ़कर अबीर को गले से लगा लिया और उससे बोला, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है अबीर, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और तुम अच्छी तरह जानते हो कि राजवीर जिंदल के इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा किया है। इस पर अबीर ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किए और वो आकाश की बात काटते हुए एकदम से बोला, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं इस बात को लेकर परेशान नहीं हूं कि राजवीर जिंदल ने मेरा घर, प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया या मुझे बैंकरप्ट कर दिया। फिलहाल आप लोग यहां से मेरे साथ चलिए, मुझे आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अब जैसे ही अबीर ने अचानक ये कहा तो ये सुनकर आस्था का दिल और जोरों से धड़कने लगता है। वो फट से बोली, अबीर जी, मिस्टर सिंघानिया तो ठीक है ना? मैं काफ़ी वक्त से उन्हें फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और वो अभी तक घर भी नहीं आए हैं, वो ठीक तो है ना? अब जैसे ही सबने आस्था की बातों पर गौर किया तो सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बनते बिगड़ते जा रहे थे। दूसरी ओर नानी माँ, अभिमान जी और दादाजी, राधिका, रश्मि, साथ ही साथ वंशिका, ये सब मारिया और रौनक के साथ मौजूद थे। सब लोगों ने डिसीजन लिया था कि दोनों बच्चों की देखभाल पूरे एक महीने तक एक ही जगह करेंगे। सभी अपनी बातचीत में मग्न थे, इसलिए अबीर सिंह राठौर के वहां आने के बारे किसी को पता नहीं चला था। दूसरी ओर आस्था काफी हद तक घबरा गई थी। टाइगर, जो आहान और सुमित को बाहर जाते हुए देख चुका था, वो तुरंत वहां आकर खड़ा हो गया और आस्था को घबराया देख के उसने गहरी आवाज में अबीर से पूछा, मिस्टर राठौर, पूरी बात बताइए, क्या बात है? और क्वीन, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तब अबीर बोला, आप लोग मेरे साथ चलिए और आस्था तुम भी साथ चलो। आज पहली बार अबीर ने आस्था को बटरफ्लाई नहीं कहा था बल्कि आस्था कहा था, और ये बात भी सभी के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी। फिलहाल देर ना करते हुए सभी के सभी अबीर के साथ जाने लगे। आस्था की कार टाइगर चला रहा था और उसके साथ आहान और ध्रुव भी बैठे हुए थे। सभी का चेहरा पूरी तरह से उलझन में था। वहीं दूसरी कार में अबीर, आकाश और सुमित बैठे हुए थे। जल्दी ही देर ना करते हुए सारी गाड़ियां एक फार्म हाउस पर आकर रुकी, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। उस फार्म हाउस को देखकर आस्था और भी ज्यादा हैरत में पड़ गई थी। वहीं आकाश और सुमित दोनों अपनी बंदूकों के साथ जल्दी से बाहर निकले। वहीं टाइगर का माथा झनझना उठा। वो कठोर आवाज में बोला, मिस्टर राठौर, आप हमें यहां क्यों लेकर आए? कहीं इसमें आपकी कोई चाल तो नहीं? टाइगर के सवाल करने पर आस्था ने उसे शांत रहने का इशारा किया और वो सीधा अबीर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया। वो उससे परेशानी भरी आवाज में बोली, क्या बात है अबीर जी, प्लीज हमें साफ साफ बताइए ना, आपने हमें रास्ते में भी कुछ नहीं बताया, हमें अरमान जी की बहुत चिंता हो रही है। वो अब तक घर भी नहीं आए और फोन भी नहीं उठा रहे हैं, और आप हमें यहाँ फार्म हाउस पर क्यों लेकर आए हैं? वैसे भी हम काफी परेशान हैं, प्लीज बताइए ना बात क्या है। तब अबीर ने गहरी सांस भरकर कहा, मैं आप लोगों को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि अरमान कहीं और नहीं बल्कि इसी फार्म हाउस के अंदर है। अबीर के शब्दों ने उनके कन्फ्यूजन को और ज्यादा बढ़ा दिया था। अब सब अबीर को सवालिया नजरों से देख रहे थे। आकाश ने आईब्रो चढ़ाई और एरोगेंट वॉइस में बोला, लेकिन ये फार्म हाउस अरमान का है ही नहीं और न ही हम में से किसी का है, तो फिर अरमान इस फार्म हाउस पर क्या करने आया है? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी।